हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी शिवानी आगे आई और उसने वीरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वीरेश, समझने की कोशिश करो। वो सब कुछ जो भी हुआ वो हमारे वश में नहीं था, और हमारे वश में जितना था उतना हमने किया। और जब हम अपनी जगह से हल भी नहीं पा रहे थे तो उस वक्त हम भला राजकुमारी को कैसे बचाते। शिवानी की बात सुनकर वीरेश ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही थोड़ी दूर पर कुछ हलचल हुई। वहां पर काफी सारे लोग महाराज को लेकर अंदर आ रहे थे, और जैसे ही महाराज के आने की खबर उन लोगों ने सुनी, रानी और चंद्रिका भी कमरे से निकालकर उसी तरफ आए, और बाकी सारे लोग भी वीरेश के साथ वहां उसी तरफ ही गए। और फिर रानी ने तुरंत ही चिल्लाकर कहा, सेविका जाओ, राजवैद्य को बुलाकर लाओ। क्या हो गया महाराज को, ये ठीक तो है? राजा बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं लग रहा था। विक्रांत के काली शक्तियों की वजह से राजा के शरीर पर भी अजीब से काले निशान पड़े हुए थे, और वो इस वक्त बेहोश था। चंद्रिका बाकी सबके साथ वहां पर ही रुक गई, और रानी राजा के पास आकर उनके सिरहाने ही बैठ गई। और कुछ ही देर में राजवैद्य आ गए और वो राजा का उपचार करने लगे। तब तक भीरस और रक्षक दल के लोग बाकी सारे लोगों की मदद करने लगे, और जो भी घायल लोगों को ठीक कर सकते थे उन लोगों ने वो भी कोशिश किया, और बाकी सारे लोगों को भी उनकी जगह पर पहुंचाया। दूसरी तरफ जंगल के बीच बना आश्रम, महात्मा ठाकुर नरेंद्र के साथ वहां अपने आश्रम में वापस आ गए हैं, लेकिन वहां का माहौल बहुत ही अजीब सा लग रहा है। महात्मा को पहले ही समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर सारे लोगों के लटके हुए चेहरे देखकर उन्होंने एक शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या हुआ है और बाकी सारे लोग कहाँ पर हैं? अपने गुरुजी की बात का जवाब देते हुए उसे वीरेश ने बोलना शुरू किया, गुरुजी, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपसे क्या ही छुपा हुआ है? लेकिन कल रात में राजमहल पर विक्रांत ने हमला किया, और यहाँ हमारे रक्षक दल के भी कुछ लोग उनकी मदद के लिए राजमहल गए थे, लेकिन वहाँ के हालात बहुत ही बुरे हैं, और अभी वो राजकुमारी को वहाँ से ले जाने में भी कामयाब हो गया है। उसे शिष्य की ये बात सुनते ही ठाकुर के मुँह से एकदम ही निकल नहीं, निक्रांत, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें मना किया था। वो बहुत ही ज्यादा हैरानी और सदमे में लग रहे थे, लेकिन महात्मा के चेहरे पर अभी भी एकदम शांति भरे भाव हैं। उन्होंने अपने शिष्य को वहां से वापस जाने को कहा, और शिष्य उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। तभी महात्मा ने ठाकुर की तरफ देखकर कहा, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो शैतान का अंश है और यही उसका मकसद है। तुम मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते ठाकुर। महात्मा की बात सुनकर ठाकुर ने कहा, हाँ मुझे पता है, और मैं उससे कोई ऐसी अच्छाई की उम्मीद रख भी नहीं रहा था, लेकिन कल रात ही उसने उसे पर हम अचानक से हमला क्यों किया? महल पर जहां तक मुझे पता है वो ऐसे सामने से हमला नहीं करने वाला था, तो फिर उसने ये क्यों किया? अब ये तो वही जाने, और मुझे भी यही लगा था कि वो पीठ पीछे ही कुछ करेगा, क्योंकि शैतान अक्सर ऐसा ही करते हैं, लोगों का फायदा उठाते हैं या फिर परिस्थितियों का, और फिर जो उन्हें करना होता है उसे अंजाम देते हैं। लेकिन इस तरह से रात को हमला, और ठीक उसी वक्त जब हम दोनों ही यहाँ आश्रम में महल के नज़दीक नहीं थे। महात्मा ने थोड़ा सा सोचते हुए उनकी बात सुनकर ठाकुर ने एकदम से उनकी तरफ देखा और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो मणिकनाथ? ठाकुर के इस तरह से एकदम चौंकते हुए ये बात पूछने पर भी महात्मा ने अपने चेहरे पर एकदम शांति भरे भाव बनाए रखे, और उसी तरह मुस्कुराकर महात्मा ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, मैं वही कहना चाहता हूँ ठाकुर। बताओ, कैसे खबर मिली थी तुम्हें इस बात की कि उसे श्राप का जन्म वहीं से हुआ है, और तुम वहां उस जगह पर क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, और कल रात ही क्यों? महात्मा की ये बात सुनकर नरेंद्र ठाकुर विक्रांत के दादाजी क्या का रानी से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गईं, और उन्होंने इस तरह हैरानी से कहा, इसका मतलब ये सब कुछ इस शैतान का रचा हुआ था। विक्रांत ने जानबूझकर मुझे और तुम्हें वहां पर फंसाया, जिससे कि पीठ पीछे वो अपने इरादों को अंजाम दे पाए, और आखिर उसने वो कर लिया जो वो इतने दिनों से करना चाहता था, है ना? यही कहना चाहते हो ना तुम? ठाकुर के मुंह से पूरी बात सुनने के बाद महात्मा ने बहुत ही तसल्ली से मुस्कुराकर धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर इतने ही समझदार हो तो फिर तुम उसके जाल में कैसे फंस गए? कल वहां पर जाने के बाद भी क्या तुम्हें एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि वहां आसपास शैतानी शक्तियों का वास है? फिर भी तुम आगे बढ़ते गए, और तुमने मुझे भी वहां पर ही बुला लिया मदद के लिए। अगर मैं यहाँ पर होता तो हो सकता है कि कहानी कुछ और होती। बहुत ही पछतावे के साथ ठाकुर ने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ उसका रचा हुआ जाल भी हो सकता है, और इसीलिए मैंने इस बारे में इतना नहीं सोचा। मुझे अब बहुत ही बुरा लग रहा है, तो मैं क्या लगता है, हमें महल चलकर देखना चाहिए? ये सवाल करते हुए ठाकुर ने महात्मा की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। महात्मा अभी भी सोच में पड़े हुए हैं और उन्होंने कहा, नहीं, तुम आज तक महल नहीं गए हो और राजा भी तुम्हारा विक्रांत से क्या रिश्ता है इस बारे में नहीं जानता, और मैं चाहता भी नहीं कि राजा को इस बारे में पता चले, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा तो हो सकता है कि विक्रांत का गुस्सा हो तुम पर निकले या फिर तुम्हें ही कैद कर ले। कुछ भी हो सकता है, वो गुस्से में तुम पर हमला भी कर सकता है और शायद मुझ पर भी शक। लेकिन मुझे पता है कि तुम इन सब में विक्रांत का साथ नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उसे बचाने की कोशिश करते हो और ये सब मैं राजा को समझा नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम्हें यहाँ पर ही रुकना चाहिए, मैं अकेले ही वहाँ महल जाऊंगा, मेरे शिष्य पहले से ही वहाँ पर हैं। महात्मा की ये सारी बातें सुनकर ठाकुर नरेंद्र प्रताप ने भी इस बारे में सोचा और धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाकर वो उनकी बात मान गए, क्योंकि महात्मा सारी बातें बहुत ही सोच विचार कर बोलते हैं। और अभी ठाकुर को बहुत बुरा लग रहा है कि उनकी वजह से ही महल पर हमला हो गया और महात्मा उनके दोस्त भी उस वक्त वहां पर नहीं थे राजा और महल वाले लोगों की मदद करने के लिए, जिसकी वजह से विक्रांत अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो गया। इसके बाद महात्मा ने अपने दो शिष्यों को और साथ में लिया और वहां से तुरंत ही महल के लिए निकल गए, और उनके जाने के बाद ठाकुर भी वहां से निकल गया, लेकिन बाकी सबसे छिपकर। ठाकुर ने आश्रम में किसी को भी नहीं बताया कि वो वहां से कहीं जा रहा है, क्योंकि असल में वो विक्रांत से मिलने या उसे ढूंढने के लिए ही जा रहा था, क्योंकि उसे शायद पता है कि विक्रांत कहाँ हो सकता है। विक्रांत के दादाजी को विक्रांत से मिलकर इस बारे में सामने से बात करनी है, क्योंकि कल रात उसने जो कुछ भी किया, इतना सब कुछ जाल बिछाकर जिसमें कि वो खुद भी फंस गए, इसलिए अभी उन्हें ये जानना है कि विक्रांत अब आगे वो क्या करने वाला है। दूसरी तरफ विक्रांत राजकुमारी वसुंधरा को गोद में लिए हुए एक जगह पर आया, और वो जगह देखने में बहुत पुराने खंडहर जैसी लग रही थी, जो कि शायद पहले कोई बहुत बड़ा सा घर या हवेली रही होगी, और वहां पर आसपास इतनी ज्यादा झाड़ियां उगी हैं कि दूर से देखने पर लगता ही नहीं है कि वहां पर कोई घर है। इसके अलावा बहुत ही बड़े बड़े से पेड़ जो कि दिखने में एकदम डरावने लग रहे हैं।
उस घर के बीच के भी पेड़ निकले हुए हैं और उसके चारों तरफ भी पेड़ की जड़ें और टहनियां पूरे घर को इस तरह से ढक रही हैं कि वो दूर से तो क्या, पास से देखने पर भी बिल्कुल नजर ना आए, और जिसको नजर आए भी तो वो इतना डरावना लगा कि कोई भी वहां उसके आसपास भटकने की भी हिम्मत ना करे। लेकिन विक्रांत को तो डर छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही शैतान का अंश है, और जिससे लोग डरते हैं वो डर ही विक्रांत खुद थी। कहानी जारी रहेगी।